रेहान चुपचाप सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसकी नज़रें नीचे खड़े नूर और अरमान पर टिकी हुई थीं, जो आपस में तेज आवाज में बहस कर रहे थे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं रेहान भाई के साथ गई? नूर ने तंज भरे लहजे में कहा। फैजान के साथ उसकी छोटी सी गाड़ी में क्यों जाती? आपकी तरह कोई बड़ी गाड़ी थोड़ी है उसके पास। असल में ये वही बात थी जो अरमान पहले कह चुका था कि नूर बस में उसके साथ जाने के लिए बहाने बनाती है। अरमान के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। और वापसी में किसी क्लासमेट के साथ आ गई? मैं तो सोच रहा था बेचारी नूर बस में धक्के खाती आएगी, लेकिन तुम्हें तो हर बार कोई ना कोई मिल ही जाता है छोड़ने के लिए। नूर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आप ये कहना चाहते हैं ना कि जहां मुझे सुख सुविधा मिलती है मैं वहीं चली जाती हूँ? एक पल की चुप्पी के बाद उसने खुद ही जवाब दे दिया। तो हाँ, सही कह रहे हैं आप, हर कोई यही चाहता है और मैं भी ऐसी ही हूँ। जहाँ लग्जरी मिलेगी मैं वहीं जाऊंगी, मुझे अपनी जिंदगी में हर चीज चाहिए। ऊपर खड़ा रेहान ये सब सुन रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे वही मिल गया हो जो वो चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, तो नूर खुद ही मान रही है। नीचे अरमान का गुस्सा अब साफ दिखने लगा था। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, नूर ने ठंडे लहजे में कहा। और अगर आपको आ रही है तो आप नीचे चले जाइए, मुझे अब मत बुलाइए, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। कुछ सेकंड तक अरमान उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, अब जब तक तुम खुद मुझे नहीं बुलाओगी मैं ना तुम्हारे पास आऊंगा ना तुमसे बात करूंगा, गुड बाय नूर। इतना कहकर वो मुड़ गया। नूर वहीं खड़ी रह गई, गुस्से में, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी भी थी। और ऊपर रेहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। यही तो वो चाहता था। सीन में बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं, बस फ्लो और क्लैरिटी थोड़ी स्मूथ कर देते हैं ताकि हर पल और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। अरमान जा चुका था। नूर कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम जम गए हों। दिल में गुस्सा था, आंखों में नमी। उसी वक्त दूसरी तरफ की सीढ़ियों से रेहान धीरे धीरे ऊपर आया। उसने पीछे से आकर नूर के कंधे पर हाथ रखा। नूर एकदम से घबरा गई। कौन? मैं हूं, रेहान की आवाज धीमी थी। नूर ने तुरंत इधर उधर देखा, अरमान अब वहां नहीं था। उसे एक पल को तसल्ली हुई, शायद रेहान ने कुछ नहीं देखा सुना। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेहान पहले से सब सुन चुका था। क्या हुआ? रेहान ने गौर से उसे देखते हुए पूछा। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर घबरा गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इतनी रात को वो यहां क्यों खड़ी थी, ये सवाल ही उसे परेशान कर रहा था। तुम रो क्यों रही हो? रेहान ने फिर पूछा। नूर ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं, वो आज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, बस उसी की वजह से। वो खुद भी जानती थी कि ये बहाना है, लेकिन उस वक्त उसके पास और कुछ था ही नहीं। इसमें रोने की क्या बात है? रेहान हल्का सा मुस्कुराया। फेल हो जाऊंगी तो क्या हुआ? मैं सच में फेल हो जाऊंगी, नूर की आवाज भर्रा गई। मैं पास करवा दूंगा, रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपकी यूनिवर्सिटी में इतने कनेक्शंस हैं क्या जो आप मुझे पास करवा देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? रेहान बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर उसे पास रखी कुर्सी तक ले गया। बैठो आराम से। नूर चुपचाप बैठ गई। उसने अपने पैर सामने टेबल पर रख दिए, जैसा रेहान ने कहा। वो अभी भी हल्का हल्का रो रही थी। तभी रेहान की नज़र उसके पैर पर गई। ये क्या हुआ तुम्हारे पैर को? उसने झुककर उसका पैर पकड़ लिया। पायल की वजह से उसकी त्वचा पर लाल निशान पड़ गया था। वो पायल की वजह से, नूर ने अपना पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने छोड़ा नहीं। उसकी उंगलियां उस लाल निशान पर धीरे धीरे फिरने लगी। नूर एकदम असहज हो गई। उसके चेहरे पर साफ डर और बेचैनी दिखाई देने लगी। अगले ही पल रेहान ने बिना पूछे उसकी पायल उतार दी। जो चीज तकलीफ दे उसे पहनना नहीं चाहिए, उसने धीमे लहजे में कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसने नूर को और ज्यादा डरा दिया। नूर ने झटके से अपना पैर छुड़ाया, जल्दी से खड़ी हुई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे रेहान वहीं खड़ा था। उसके हाथ में वो चांदी की पायल थी और उसकी नजरें उसी पर टिकी थीं। वही पायल जो कुछ देर पहले नूर के पैरों में थी। उसके होंठों पर एक धीमी अजीब सी मुस्कान उभर आई। नूर कमरे में आते ही दरवाजे से टिक गई, जैसे बाहर की हवा अभी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई हो। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से अपनी कलाई पकड़ ली, फिर अनजाने में अपनी टखनी की तरफ देखा, वही जगह जहां कुछ देर पहले रेहान का स्पर्श ठहरा था। एक अजीब सी सहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो स्पर्श नरम था लेकिन सुकून देने वाला नहीं, धीमा था लेकिन सही नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे समझने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए छुआ हो, और ये एहसास उसे अंदर तक बेचैन कर गया। नूर ने झटके से सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो खुद से ही बात करने लगी, जैसे अपने ही ख्यालों को रोकना चाहती हो। रेहान भाई ऐसे नहीं है, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे याद आया वो नजर, वो ठहराव, वो तरीका जिससे उसने उसका पैर पकड़ा था। नूर की उंगलियां हल्का सा कांप गईं। शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, उसने फिर खुद को समझाया। आज वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, एग्जाम, अरमान से लड़ाई, सब एक साथ हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी आंखों में फिर से हल्की नमी आ गई। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को डांट रही हो। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार उसे रोक रही थी। कुछ तो गलत था। नूर ने अपने कानों को जैसे उस आवाज से बंद कर लिया। वो बेड पर बैठ गई, घुटनों को अपने करीब खींच लिया और खुद को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को ही संभाल रही हो। कुछ भी गलत नहीं था, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। सब ठीक है, बस मेरी गलत फहमी है। लेकिन उसकी धड़कन अब भी सच जानती थी। सीन बहुत अच्छा है, इमोशन, शक और रेहान की चालाकी सब दिख रही है। मैं इसे थोड़ा स्मूथ और सिनेमैटिक फ्लो में लिख देता हूँ ताकि असर और गहरा हो जाए। सादिया कमरे में अकेली बैठी थी। रेहान अकी तक नहीं आया था और सामने बेड पर फैला हुआ ज्वेलरी का सेट उसकी नजरों को जैसे बांधे हुए था। वो एक एक करके झुमकों को उठाती फिर वापस रख देती। उसके दिल में अजीब सा पछतावा था। ये झुमके आखिर बेड के नीचे आए कैसे, उसने खुद से सोचा। उसी झुमकों की वजह से कितना कुछ हो गया था। घर में हंगामा, फैजान का घर छोड़कर जाना और हर किसी के चेहरे पर शक। वो उलझन में ज्वेलरी को देख ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला, रेहान अंदर आया। क्या चाचा जान से बात हुई, सादिया ने तुरंत पूछा। उसका इशारा नासिर खान की तरफ था, लेकिन रेहान ने उसके सवाल को जैसे सुना ही नहीं। इतनी रात को ये सब ज्वेलरी लेकर क्या कर रही हो, उसने हल्के से कहा। आराम से सो जाओ, सादिया ने ज्वेलरी हाथ में लेते हुए कहा। मैं ये देख रही हूँ कि ये झुमके बेड के नीचे आए कैसे, मैंने पूरा कमरा छान मारा था। वो एक पल रुकी फिर बोली, मुझे लगता है मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। रेहान के चेहरे पर एक पल को हल्की सी सख्ती आई। जाओ, अगर तुम्हें डांट खाने का शौक है तो। नहीं, मुझे क्लियर करना चाहिए, सादिया ने धीमे से कहा। रेहान अब उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्लियर करोगी या खुद पर शक करवाओगी, सादिया चौंक गई। मुझ पर शक, क्यों, रेहान ने गहरी नजरों से उसे देखा। सोचो, ज्वेलरी तुम्हारे कमरे से गायब हुई और फिर तुम्हारे ही कमरे से मिली, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन असर गहरा। माहिरा उस दिन घर आई ही नहीं, फैजान भी चला गया था। अब बताओ, शक किस पर जाएगा, सादिया की आंखें फैल गईं। मुझ पर क्यों शक करेंगे, क्योंकि हालात वैसे हैं, रेहान ने ठंडे लहजे में कहा।
और सच कहूं, अच्छा हुआ मम्मी को ये नहीं लगा कि तुमने ही ज्वेलरी छुपाई थी, वरना बात बहुत बढ़ जाती। ये सुनकर सादिया का चेहरा उतर गया, उसकी आवाज हल्की सी कांपी। तो आपको भी यही लगता है, एक पल की खामोशी, फिर रेहान का लहजा अचानक बदल गया। वो थोड़ा नरम हुआ, उसके पास बैठ गया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सादिया, उसने धीमे से कहा। सादिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद के साथ। तुम ज्वेलरी क्यों चुराओगे, रेहान हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें खुद कितनी ज्वेलरी गिफ्ट करता हूँ, सादिया के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। उसे लगा जैसे कोई उसका साथ दे रहा है, लेकिन रेहान की आंखों में कुछ और ही चल रहा था जो सादिया समझ नहीं पाई। देखो, उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, उसने ज्वेलरी की तरफ इशारा किया। इसलिए चाहता हूँ ये जो ज्वेलरी वाला मामला है, इसे यहीं खत्म कर दो। सादिया चुप हो गई, उसके लिए ये सुकून था, लेकिन सच में यही वो जार था जिसमें वो धीरे धीरे फंसती जा रही थी।